ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
मैं पढ़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ।
सारे सपने होते हैं साकार क्वालिटी एजुकेशन के साथ सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज, जहाँ एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, जहाँ है वेल इक्विप्ड लैब्स, प्रॉपर लाइब्रेरी और ग्रीन कैंपस। साथ ही साथ आपको मिलता है वोकेशनल कोर्सेज में योगा, कंप्यूटर, म्यूजिक, ब्यूटिशियन, स्टिचिंग, टेलरिंग और रेडियो जॉकी, जो आपके बच्चे को देता है एक नई उड़ान। साथ ही साथ NSS, स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज की रेगुलर क्लासेस। गोंडा जनपद का पहला गर्ल्स कॉलेज सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9450 75 74 83, 9450 75 74 83।
ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल इन द फील्ड ऑफ डिसिप्लिन। एडमिशन ओपन फ्रॉम LKG टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासेस, कन्वेयंस फैसिलिटी, स्काउट गाइड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999, 9450 944 999।
ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
Listening, ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त RJ अदनान मौजूद है आपके साथ। आपके अपने वाले स्टूडियो में शो चल रहा है गोंधली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे बीच में खास मेहमान मौजूद है और आपको जैसा कि पता है कि हर रोज कोई ना कोई आता है ऐसा खास मेहमान, जिनकी लाइफ से, जिनके काम से हम न जाने रोज कितनी सारी चीजें सीखते हैं। आज उसी कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं मिस रुचि मोदी, जो कि एडवोकेट हैं और साथ ही साथ सोशल वर्कर हैं। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो में, जिसका नाम गोधुली है।
धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। और आपको चूंकि अपने बारे में भी मैं बताना होगा, क्यों? क्योंकि उससे हमारे लिसनर्स को ये पता चल पाएगा कि आप कौन हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी फैमिली के बारे में, आपके माता पिता के बारे में।
नाम तो आप जानते ही हैं
जी।
नाम मेरा रुचि मोदी है और मैं इसी गोंडा शहर की रहने वाली हूँ
जी।
और इसी शहर में मेरा जन्म हुआ और यही मेरी शिक्षा हुई और यही सिविल कोर्ट कैंपस में वकालत करती हूँ। साथ साथ समाज के में जो भी कुछ अपना योगदान दे सकती हूँ सामाजिक कार्यों में वो देती हूँ। इससे मुझे बहुत सुकून और आत्मसंतुष्टि मुझे मिलती है।
ओके, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि देखिए, एक तो आप सिविल कोर्ट कैंपस में रहती हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, साथ ही साथ आपने कहा कि चूंकि आप सोशल वर्कर हैं तो सामाजिक कार्यों में आपका वैसे भी योगदान रहता ही रहता है। अब पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप प्लीज अपने बारे में बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा से लेके हाई स्टडी तक कहां से कैसे हुई?
प्रारंभिक शिक्षा में GGIC,
अरे
GGIC के बाद यही अपना LBS
जी।
LBS के बाद फिर मैंने लखनऊ से लॉ किया।
ओके।
और लॉ के बाद फिर यहां फिर अपने वकालत में आगे आकर यहां प्रैक्टिस स्टार्ट किया मैंने।
ओके।
और शिक्षा के दौरान से ही मेरा सामाजिक कार्य शुरू रहा
जी। हम आपके काम पे भी आएंगे और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने एडवोकेट बनने का फैसला क्यों लिया, आप सोशल वर्कर कैसे बनी, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके माता पिता के बारे में
जी। मेरे पिता का बहुत स्नेह और मार्गदर्शन मेरे साथ था और आज आपके बीच में जो मैं हूँ, आपके साथ हूँ, वो उन्हीं का आशीष और उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं का स्नेह। लेकिन मैं कहूँगी कि शायद मेरा दुर्भाग रहा जो मेरे पिता का साथ बहुत जल्दी मुझसे छूट गया। सन 2000 2002 में मेरे पिता हमारे साथ नहीं रहे और मेरी माँ अभी जल्दी ही जनवरी में उनका भी साथ छूट गया। तो माता पिता का एक स्नेह मेरे साथ रहा और लेकिन ये एक मेरे दुर्भाग्य मेरे साथ ही चलता रहा जो मेरे माता पिता मुझसे अलग हो गए। लेकिन एक पिता बच्चियों को आप देखिए बेटों से ज़्यादा पिता स्नेह करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने के लिए लगता है कि मुझे कुछ बेहतर करना चाहिए जिससे मेरे पिता भी गर्व महसूस करते रहें। तो उनके ना रहने पे बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा सब कुछ होने के बाद। और पारिवारिक परिवेश कुछ ऐसा रहा उनके ना रहने के बाद बहुत सारी मुसीबतें बहुत सारे संघर्ष बहुत स्ट्रगल आया उसके कारण ही मैंने वकालत का फैसला किया क्योंकि घर से जुड़ी कुछ समस्याएं मेरे सामने आई जिससे मुझे लगा कि अगर अपनी परेशानियों का निस्तारण करना है तो मुझे भी कहीं ना कहीं खुद लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और उससे बेहतर शिक्षा और कानून की जानकारी से बेहतर अस्त्र कोई जीवन में हो नहीं सकता इसलिए मैंने अपने आप शिक्षा ग्रहण की उसके बाद कानून लॉ किया जिससे मैं लीगल रूप से अपनी लड़ाई लड़ सकूं। और जो मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया स्ट्रगल किया उसे मुझे लगता है कि लोगों के जीवन में भी अगर कोई इसी तरीके का स्ट्रगल जो मैंने सामने किया उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए तो एक उसी में सोशल वर्क भी जुड़ता चला गया अपनी परिस्थितियों को देखते हुए।
जी पहली चीज़ तो बहुत क्लियर है मतलब आपने कहा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती है इंसान की कुछ करता है
जी,
तो ऐसा आपके साथ रहा कि आपको लगा कि ये आपके लिए एक बढ़िया वेपन है हथियार है
जी,
कि ये खुद वकालत किया जाए और लड़ा जाए
जी,
तो कहीं ना होता है ना कि जब आप खुद के लिए लड़ना आप जान जाते हैं तो फिर आप गरीबों मजलूमों के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
बिल्कुल।
तो सोशल वर्क का लेकिन वो कौन सा ऐसा पॉइंट था वो टर्न कहाँ से हुआ कि आपको लगा कि नहीं हमको सोशल वर्कर भी होना है।
अब मैं मेरे फादर दवा का होलसेल का व्यापार करते थे
जी।
तो आप जानते हैं जब दवा का व्यापार होलसेल का हो तो एक अच्छी स्थिति रहती है।
बिल्कुल सही बात।
लेकिन अगर वो करने वाला शख्स ना हो तो उनके बच्चों पे बहुत सारी विपरीत परिस्थिति आती है।
बिल्कुल।
आप देखिए कि वो जब परिस्थितियाँ बनी तो सब कुछ होने के बाद भी मैंने जब लॉ किया तो कुछ बार मैं पैसेंजर से भी मैंने यात्रा की। सवेरे 5 बजे मेरी माँ पराठा और अचार बना के मुझसे देती थी
जी हाँ पहले ये
तो मैंने वो चीज़ें देखी है अपने जीवन में सब कुछ होने के बाद। तो इसलिए मैं लड़कियों की जब शिक्षा के प्रति इसी वजह से मेरा झुकाव रहा और शिक्षा अगर कोई लड़की अगर शिक्षित आप उसको कर देते हैं तो आप सबसे बड़ा गिफ्ट उसको देते हैं।
ओके अभी बस सिंपल सा मैं एक लाइन में चूंकि अपना क्वेश्चन कहूँगा और उसका आंसर आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो आप हैं यानी आप एडवोकेट भी हैं सोशल वर्कर भी हैं आपको अपने फैसला इसको लेने के बाद अभी कैसा लग रहा है कि आपने सही फैसला लिया था या आप कुछ और भी हो सकती थी।
नहीं ये फैसला ठीक है और कभी हम लोग जो फैसला लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी होती है। आप गीता में देखिए उसका सार यही है कि भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो मैं भी जो आज अपने जीवन में बढ़ रही हूँ वो कहीं ना कहीं उनकी भी इच्छा है और वो सब कुछ तय कर रखते हैं जैसे उन्होंने पांडव के लिए तय कर रखा था कौरवों के लिए भी तय कर रखा था। इसीलिए हर जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में एक युद्ध होता है और उसके सारथी सिर्फ केशव ही होते हैं इसलिए वो तय कर रखते हैं कि आपको किस दिशा में बढ़ना है और किससे क्या काम लेना है ये भी उनका ही निर्धारण रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि जिस दिशा में उन्होंने मुझे भेजा या जिस दिशा से मुझे वो बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ही कुछ ना कुछ मुझसे काम लेते हैं।
ओके ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। लॉ करना का मतलब ही होता है पढ़ना
जी
और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पढ़ाई में एक स्टूडेंट कैसी थी।
मैं अपने गुरुजनों की बहुत प्रिय स्टूडेंट रही हूँ और उनका आशीष मुझे मिलता है आज भी चूँकि यही शहर के हूँ सारे शहर के ही गुरु मुझे रहे सभी मुझे बहुत स्नेह प्यार लाड करते हैं तो मैं समझती हूँ सबका आशीष मुझे मिलता रहा अपने कैरियर में।
यानी सभी का आशीर्वाद आपको मिलता रहा, और इसका हम सीधा सा सेंस निकाल सकते हैं कि आप पढ़ने में एक अच्छी स्कॉलर रही हैं।
जी।
क्या स्ट्रेटजी होती थी आपकी, स्पेशली अगर जैसे हम बात करें टीनेजर जो बच्चे होते हैं 11, 12th में या 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन में, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और उनको लगता है कि करियर का बहुत ज़्यादा दबाव है, फैमिली भी कहती कि हाँ तुमको इतना नंबर गेन करना ही करना है। आपका उस वक्त कैसा अप्रोच था, क्या स्ट्रेटजीज आप अपनाती थी, अभी बच्चों के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगी?
कोई भी मेरे लिए कोई भी प्रेशर नहीं था, और हमारे अभिभावक ने, ये मैं सौभाग्यशाली रही हूँ कि किसी भी चीज़ को लेकर मेरे माता पिता ने मेरा मनोबल नहीं गिरने दिया, और किसी भी चीज़ का ये नहीं किया कि तुमको इतने ही नंबर लाने हैं। ये एक उन्होंने जो मुझे ये और मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने का इससे एक लक्ष्य मुझे मिला और एक मिली। और इसीलिए मैं बच्चों को भी कहना चाहती हूँ, उनके माता पिता से भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चों को किसी भी तरीके का आप प्रेशर मत डालिए। जैसे समुंदर में आप बच्चों को तैरना सिखाते हैं तो बच्चे को छोड़ दिया जाता है, एक गुरु के गाइडेंस में वो तैरना सीखता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर उसको डालेंगे तो वो अपने हिसाब से वो अपने जीवन का युद्ध नहीं लड़ सकता है।
जी, ये तो बात फैमिली की हुई।
जी,
आपकी खुद की स्ट्रेटजी क्या होती थी पढ़ने के दौरान, किस तरह से आप पूरा सिलेबस आप कवर करती थी, किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट आपका था, कैसे आप पढ़ाई के लिए अलग से वक्त निकालती थी, साथ ही घर का भी काम करती थी, किस तरह से मैनेज करती थी?
देखिए, आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऑफिस का भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं और स्टडीज़ भी अपनी साथ साथ करती हैं। आज देखिए बहुत सारी महिलाएँ हैं जो मैरिड भी हैं और उन्होंने परिवार भी संभाला, सब कुछ संभाला, और फिर आज शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रही हैं। तो उसी तरीके से हम लोग भी अपना पढ़ाई का शेड्यूल भी करते थे, घर भी अपना काम करते थे, कोर्ट भी आना है तो जैसे मुझे अपना घर का काम करके निकलना है, और जो महिलाएं, जो लड़कियां बाहर काम करती हैं वो अपना सारा शेड्यूल बहुत अच्छे से मैनेज करके अपने टाइम से अपने घर से बाहर अपने काम के लिए निकलती हैं।
जी, यानी टाइम मैनेजमेंट तो देखिए ज़रूरी होता है आपके भी अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर लड़कियों की बात की जाए तो वो किसी भी घर की हो, कुछ ना कुछ उनके जिम्मे घर का काम रहता ही रहता है।
बिल्कुल बिल्कुल, बेशक रहता है,
और शायद इसीलिए लड़कियां ज्यादा जिम्मेदार होती
हैं। बिल्कुल सही है,
बनिस्बत लड़कों के।
नहीं, जिम्मेदार होती हैं, दोनों जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि मैं लड़कियों को लड़कों से अलग नहीं करके देखती, और दोनों ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे समाज के, और दोनों अगर मिलके घर चलाते हैं तो एक बेहतर समाज स्थापित होता है घर के साथ साथ।
बहुत ही खूबसूरत बात आपने कहा कि अगर दोनों मिलके घर चलाते हैं तो एक बेहतर समाज स्थापित होगा। बिल्कुल सही बात है। आपने चूंकि सोशल वर्क करना कब से शुरू किया, आपने पहले किस काम से शुरुआत की, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है,
जी,
तो हम
जी,
ब्रेक
जी,
के आने के बाद
बिल्कुल संगीत भी बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, तो हम अपने श्रोताओं से ही कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ में मौजूद हैं मिस रुचि मोदी, जो कि एडवोकेट हैं, साथ ही साथ सोशल वर्कर हैं। स्टे ट्यून्ड।